ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय आठ श्लोक क्रमांक 51 ततो भक्ति भगवते पुत्र भूते जनार्दने दम्यन्तो नितराम आचित गोप गोपीशु पारत ततो भक्तिर भगवती पुत्र भूते जनार्दने दम्यन्तो नितराम आचित गोप गोपीशु भारत ततो भक्तिर भगवती पुत्र भूते जनार्दने दम्यन्तो नितराम आसीत् गोप गोपीशु भारत ततो भक्ति भगवती पुत्र भूते जनार्दने दम्यन्तो नितराम आसीत् गोप गोपीशु भारत ततो भक्तिर भगवती दप्यन्तो नितरामाशे भक्तिर भगवते पुत्र भूते जनार्दने दम्यन्तो नितराम आसीत् गोप गोपीशु भारत ततोर भक्तिर भगवते पुत्र भूते जनार्दने दम्यन्तो नितराम आसीत् गोप गोपीशु भारत तत्पश्चात भक्ति भगवती भगवान की भक्ति भक्ति संप्रदाय पुत्र भूते भगवान के रूप में जो माता यशोदा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए जनार्दने भगवान कृष्ण में दंपतियों पति पत्नी दोनों नित्राम निरंतर आचित या गोप गोपेशु गोप तथा गोपियों जो वृंदावन के वासी तथा नंद महाराज तथा यशोदा के सानिध्य में भारत हे महाराज परीक्षित। अनुवाद और तात्पर्य है श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की हे महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने तो उन्हें दोनों ने निरंतर अविचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। तात्पर्य, यद्यपि पड़ोसी गोप गोपों तथा गोपियों के यहाँ से कृष्ण द्वारा मक्खन दही दूध का छुराना ऊपर से सुखदायी प्रतीत होता था, किंतु वस्तुतः वह भक्तिभाव में स्नेह का विनिमय था। गोप तथा गोपियाँ भगवान के साथ जितना ही अधिक स्नेह विनिमय करती उनकी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। कभी कभी हम बाहरी तौर से देखते हैं कि भक्ति में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है, किंतु तथ्य इससे भिन्न होता है। जब भक्त कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो वह कष्ट दिव्य आनंद होता है। भक्त बिने बिना नहीं समझा जा सकता। जब कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंदमहाराज तथा यशोदा की भक्ति बढ़ती अपितु उनके साथ रहने वालों में भी भक्ति बढ़ती। दूसरे शब्द में जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं वे सर्वदा सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति भी विकसित करेंगे। ओम अज्ञातिमिरंधस्य ब्रह्मानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुर्नवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्यान भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यास्त अहं प्रपद्ये सूर्यशतसमकान्ति अरुणवसन सुबलित प्रकांड देह कमललोचन हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद आठवां अध्याय 51 नंबर श्लोक से चर्चा होगा। ये प्रसंग जो सुना है बहुत मार्मिक प्रसंग है, इस पर व्याख्या करना भी बहुत कठिन है। श्री सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग को बताते हैं और जो भगवान ने मिट्टी खाया इस आठवें अध्याय में उसका वर्णन है। दो बार भगवान ने इस अध्याय में मिट्टी खाया है, एक बार धुमाई लेते हुए, दो बार भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करवाया माता यशोदा को, एक बार जमाई लेकर और एक बार मिट्टी खाने के बाद। तो विस्तार रूप से इस मिट्टी जो भगवान ने ग्रहण किया और उस बाद जो मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया उस पर बहुत चर्चा भक्तों ने या वैष्णव ने किया है। जब भगवान का दर्शन विराट रूप में किया यशोदा मैया ने मुख में, तब ऐश्वर्य भाव का उदित हुआ ऐसा कहीं कहीं वर्णन है, लेकिन जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि उस समय गंध मात्रेण न थोड़ा सा भी ऐश्वर्य भाव यशोदा मैया में उदित नहीं हुआ है। यशोदा मैया की बात तो छोड़िए, जो ब्रज में गोप गोपी है उनका भी ऐश्वर्य भाव कभी उदित नहीं होता है। कभी कभी भगवान ऐसी लीला प्रकट करते हैं उनका ऐश्वर्य प्रभावित करने के लिए, लेकिन ब्रज का इतना प्रभाव है, प्रेम से आवृत है सब ब्रजवासी, उन पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता है ऐश्वर्य का। तो इस तरह जब ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ लेकिन माता यशोदा के पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा और तुरंत माता यशोदा कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी तब श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, श्री परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि किम करोति नंद किम करोति ब्राह्मण श्रेय एवं महोदय यशोदा स महाभागा यश स्तनम हरि। नंद किम करो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि जो इस तरह उनको भगवान के बाल लीला का या जो भी पुत्र रूप में उनको लीला किया वो उनको अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ और उससे भी अधिक अवसर माता यशोदा को प्राप्त हुआ। यशोदा स महाभागा यश स्तनम हरि, जो साक्षात हरि है सर्व मंगल हरि, सर्व अमंगल को हर लेते हैं ऐसे भगवान हरि का, हरि जो यशोदा मैया का स्तनपान किया, ऐसा कौन सा यशोदा मैया ने कार्य किया? तो इस प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते उसमें जो हम चर्चा किए, तो जिस तरह ऋषि महाराज ने प्रश्न किया कि किम करो दी ब्राह्मण, नंद महाराज ने कौन सा ऐसा कार्य किया, तो क्या परीक्षित महाराज ये नहीं जानते थे कि ये भगवान के शाश्वत माता पिता हैं, तो उनको कोई कार्य करने की या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भी ये प्रश्न क्यों किया? आचार्य लोग इस पर प्रश्न उठाते हैं। तो परीक्षित महाराज जानते थे, लेकिन साथ साथ ये भी जानते थे परीक्षित महाराज कि कहीं कहीं उसने सुना था कि द्रोण और धरा अभी उसमें उल्लेख हुआ है, तो उसने तपस्या किया था, किसने तपस्या किया था? तब उसी प्रश्न को लक्ष्य में लेकर श्री सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं कि पूर्व जन्म में ये द्रोण और धरा थे और उसने भगवान की भक्ति की और ब्रह्मा से आशीर्वाद मांगा कि मैं भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हो, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और इस तरह वो इस पृथ्वी पर आए द्रोण और धरा। और श्रीधर स्वामी कहते कि वही द्रोण और धरा नंद और यशोदा जो शाश्वत भगवान के माता पिता उसमें समिष्ट उसमें समा गए। तो प्रश्न यहाँ यह होता है कि जो द्रोण और धरा है वो नंद और यशोदा मैया के समा गए, जो शाश्वत है उसमें। तो जब लीला समाप्त होता है तब ये द्रोण और धरा जो उसमें समा गए वो भगवान के नित्य लीला में प्रवेश होते हैं या उनका वहाँ स्थान क्या होता है, उस प्रश्न का हमें लालसा होता है जानने के लिए। तब श्रीधर स्वामी इत्यादि इसका उल्लेख करते हैं कि जो भगवान का जब अवतरण इस पृथ्वी पर होता है तो उनका माता पिता शाश्वत रूप से उनके साथ लीला में सहाय करने के लिए आते हैं। तो साथ साथ में प्रभुपाद इस 50 नंबर श्लोक में भी कहते हैं कि जो द्रोण और धरा है वो भी भगवान के शाश्वत माता पिता है। तो उसने इस नंद और यशोदा में कैसे समा गई, वो भी शाश्वत, प्रभुपाद कहते हैं कि वो भी शाश्वत माता पिता है, भगवान की लीला में वो उससे पहले आ गए। क्योंकि जब भी इस धरा पर कृष्ण प्रकट होते हैं तो उन्हें माता पिता द्रोण तथा धरा उनके शाश्वत माता पिता को चाहिए कि वो जो नंद तथा यशोदा के रूप में हो। द्रोण और धरा वो भी प्रभुपाद कहते हैं कि वो भी शाश्वत है। तो यहाँ ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करते वो कैसे समझे कि वो भी शाश्वत है और जो ये शाश्वत जो गोलोक में वृंदावन में जो अनादि काल से नंद यशोदा है वो भी शाश्वत है। तो उसका उल्लेख करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं जो द्रोण और धरा है वो वही नंद यशोदा के अंश रूप में इस पृथ्वी में प्रकटित होते हैं। उसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में छठा स्कंध में छठा अध्याय में 11 और 12 श्लोक में, जहाँ 8 वसुओं का वर्णन है उसमें द्रोण का नाम आया है। छठा स्कंध छठा अध्याय 11 और 12 नंबर श्लोक में वह 8 वसु है उसमें भी द्रोण आया है, द्रोण और धरा। वहाँ धरा था उसकी पत्नी का नाम दूसरा है, लेकिन वहाँ तात्पर्य में आचार्यगण कहते हैं कि अन्य कल्प में भी ये धरा वहाँ उनकी पत्नी थी। तो अंश रूप में भगवान की लीला की सहाय करने के लिए वो भगवान से पहले आ गए इस पृथ्वी में, और वो 8 वसुओं में से ये द्रोण एक वसु है जो नित्य है भगवान के साथ साथ पार्षद, लेकिन अंश रूप में वहाँ वो आए। वही फिर बाद में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं और भगवान की भक्ति करके भगवान से वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते के लिए वो भाव हमें वो अवसर प्राप्त हो। वहाँ ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हैं, लेकिन वहाँ द्रोण और धरा ने भगवान के पुत्र रूप में प्राप्त हो ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से नहीं मांगा, क्योंकि ब्रह्मा जी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कोई ऐसा वरदान दे सके। हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं उसमें भी वो भी प्रार्थना करता है कि मुझे व्रज में रज का लता पत्ता बना दो ताकि वो उस व्रजवासियों की शरण रज मुझ पर गिरे। तो वो नंद और यशोदा के या द्रोण और धरा को कैसे आशीर्वाद दे सके, क्योंकि वो जानते थे द्रोण और धरा वो नित्य उनके शाश्वत माता पिता, वो अंश रूप में भगवान की लीला में सहाय करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो इस तरह जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन वहां श्लोक आया पराभक्ति, भगवान में भक्ति प्राप्त हो ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांगा। तो उसी हिसाब से ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको भगवान की जो वात्सल्य प्रेम भक्ति है वो प्राप्त हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान नहीं दिया कि भगवान आपके पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो इस तरह ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जब इस धड़ा और द्रोण जब इस जगत में आए, तब भगवान की जब शाश्वत माता पिता है वो इस भगवान के साथ साथ आते हैं और उसमें वो ये अंश में अंश समा जाते हैं। जिस तरह हम देखते और जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि भगवान कृष्ण वासुदेव देवकी माता के गर्भ में प्रकटित हुए भगवान कृष्ण, और उनको तुरंत वसुदेव जी श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, तुरंत वसुदेव जी उनको गोकुल लेके गए। तो गोकुल लेने के बाद, गोकुल जाने के बाद जब वो नंद गृह में प्रवेश किए, तब वहां भी यशोदा मैया को एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। लेकिन ये जो देवकी मैया के सामने प्रकट हुए वो अंश थे, और जो साक्षात अंश जो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जो ब्रजेंद्र नंदन है वो यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो ये जब गए वसुदेव नंदन तो वहां वो समा गए। तो उसी प्रकार ये द्रोण और धरा यशोदा मैया और नंद बाबा के जो शाश्वत उनके माता पिता है उसमें वो समा गए। तो समा गए जब भगवान इस धरातल पर लीला किया, जब इस धरा पर धरातल लीला चल रही थी और उनके बाद जब अप्रकट भगवान अपने नित्य धाम में प्रवेश किए, तब इस द्रोण और धरा का क्या हुआ ये भी प्रश्न उठता है ना। जब शाश्वत उनके माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा है तो ये भी उनके अंश में समा गए, तो वो उनका अस्तित्व अलग होता है या उसी में रहता है? तो वहां भी आचार्य ने श्रीधर स्वामी ने खास करके टीका लिखा है, जो अंश है वो अंश में समा गए वो कभी अलग नहीं होते, वही उस नित्य रूप से भगवान जी सेवा में रहते हैं, क्योंकि वो एक ही है। उनके अंश रूप में हुए फिर बाद में वो उसमें समा गए, उसमें वो अलग नहीं है, इसलिए उनका वहां शाश्वत प्रेम रूप में वो रहते हैं अनंत यशोदा। तो उसमें और भी प्रश्न उठता है कि क्या कोई भक्त वात्सल्य प्रेम या वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करता है तो उनकी स्थिति क्या होती है? तो जो नंद और यशोदा जो शाश्वत है तो वहां दूसरा नंद यशोदा बनता है क्या, दूसरा माता पिता भगवान का बनता है गोलोक धाम में, जो इस भाव में जो भजन करते हैं इस धरातल पर? तो वहां भी कहते हैं कि नहीं नहीं, जो अनादि काल से माता पिता यशोदा मैया और नंद बाबा है वही अकेले ही रहते हैं, बाकी जो भी उसके वात्सल्य भाव से भगवान के भजन करते हैं वो वहां गोलोक धाम में जाते हैं, लेकिन उनके अनुगत्य में सेवा करते हैं। नंद और यशोदा मैया जो वात्सल्य भाव की सेवा करते हैं उनके अनुगत्य में ही वो सेवा करते हैं, ताकि वो माता पिता का पद वो प्राप्त नहीं करते, क्योंकि माता पिता भगवान की एक ही है नंद और यशोदा, दूसरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसमें भी श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में लिखा है कि जो भगवान के माता पिता शाश्वत नंद और यशोदा है उनके देह से ही प्रकट हुए हैं, भगवान ब्रजेंद्र नंदन के देह से ही प्रकट हुए, ताकि वो कोई अन्य उस स्थान को कहीं नहीं ले सकता। भक्त कितना भी भजन करे, कितना भी भाव प्राप्त करे वात्सल्य भाव का, लेकिन वो गोलोक धाम में जाकर वो नंद और यशोदा के अनुगत्य में उनकी सेवा प्राप्त होता है, लेकिन माता पिता का पद प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह इस प्रसंग में द्रोण और धरा का प्रसंग चल रहा है, और बाकी इनका अन्य अन्य पुराणों भी और अन्य अन्य प्रसंग से भी पता चलता है कि कहीं कहीं ऐसा प्रसंग है जो उनके अंश रूप में देवता भी आते हैं भगवान की लीला में सहाय करने के लिए अंश रूप में, तो उसका क्या होता है? जब भगवान की लीला समाप्त तो हो जाती है, जो देवता हम किसी दसवें स्कंद में सुने शुरुआत में कि जब पृथ्वी माता बहुत दुखी हुई तो गाय का रूप लेकर गई ब्रह्मा जी के पास, तब ब्रह्मा जी और सब क्षीर सागर के तट पर गए और वहां स्तुति की भगवान ने, और भगवान ने आदेश दिया कि हमें शीघ्र ही इस भूमि का भार उतारूंगा और शीघ्र ही प्रकट होऊंगा। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहते हैं कि आप यदुकुल में अपने में जन्म धारण करो और भगवान की लीला में सहाय करो। तो कई देवता उस यदुकुल में प्रकट हुए, तो उन देवता जब भगवान की लीला में सहाय करने के लिए प्रकट हुए तो भगवान उस लीला समाप्त करते हैं, अश्वधाम में जाते हैं, तब उन देवताओं का क्या होता है, ये भी प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि द्रोण धरा जिस पर भगवान के धाम में गए क्योंकि वो अंशी थे इसलिए वो गए, लेकिन देवता का ऐसी स्थिति नहीं होता है, वो भगवान के धाम में नहीं जाते हैं, क्योंकि देवता देवता है वो उस भक्ति प्राप्त करके उस धाम में भगवान की लीला में सहाय करने के लिए नहीं आए। वो कैसे आए हैं? ब्रह्मा जी का आदेश पाकर, ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वो भगवान की लीला में सहाय करने के लिए आए हैं, तो इसलिए वो भगवत धाम या द्वारका लीला में प्रवेश नहीं करते। उसका प्रमाण भी मिलता है 11वें स्कंद में पहले अध्याय में, जब श्राप मिला के अजीवंश आपस में युद्ध करके समाप्त हो जाएंगे, तब सभी यादव द्वारका में उनका विनाश नहीं हुआ, युद्ध नहीं किए, वो प्रभात क्षेत्र में गए समुद्र के तट पर, वहां जाकर वो युद्ध करके सब समाप्त हो गए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये देवता अगर द्वारका में युद्ध करके समाप्त हो जाते तो उनको शाश्वत धाम प्राप्त हो जाता। अगर कोई भगवान के धाम में शरीर देह त्याग करता है तो उनको निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त होता है, इसलिए भगवान ने उनको प्रभात क्षेत्र में वहां जाकर यदुवंशों का आपस में युद्ध करके वहां उनका शरीर छूट गया, क्योंकि उनको भगवत या द्वारका धाम प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनका भक्ति करके वो भाव प्रकट ही नहीं हुआ था, तो ब्रह्मा जी का आदेश पाकर भगवान की लीला में सहाय करने के लिए वो आए थे, इसलिए वो प्रभात क्षेत्र में युद्ध करके समाप्त हो गए, फिर अपना अपना स्थान वो ग्रहण कर लिए। तो इसी ऐसा स्थान ये द्रोण और धरा का नहीं है। और दूसरा भी इस प्रसंग में ये भी प्रश्न उठता है, भक्त साधना करके ही भक्ति प्राप्त करते करके ही वो भगवत नाम प्राप्त कर लेता है, या उनको फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है, तो इस प्रसंग का भी बृहद भागवत में वर्णन मिलता है कि जब गोप कुमार भक्ति और मंत्र के प्रभाव से एक एक ग्रह लोक में जाते हैं, सर्वप्रथम स्वर्ग लोक में, जन लोक में, तप लोक में, मर लोक में, ब्रह्म लोक में, हर एक स्थान पर भगवान का दर्शन करते हैं वहां, लेकिन उनका भाव के अनुसार उनकी संतुष्टि नहीं मिलती है। स्वर्ग में जाते हैं जब गौ कुमार, तब वहां उपेंद्र भगवान उपेंद्र का वो दर्शन करते हैं, लेकिन उनका भाव के अनुसार उनका दर्शन नहीं होता, वहां संतुष्टि उनको प्राप्त नहीं होती है गोप कुमार की। तब वो ऊपर के लोक में जाते हैं जन लोक में, वहां भी यज्ञ पुरुष में वहां भगवान की पूजा होती है, लेकिन फिर भी वहां उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। फिर सब लोक में जाते हैं जहां सनत कुमार आदि शत्रु कुमार भगवान की सेवा करते हैं परमात्मा के रूप में, तो वहां भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ब्रह्म लोक में भी जाते हैं, वहां ब्रह्मा जी भी भगवान की आराधना करते हैं, तो वहां भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। गोप कुमार एक एक लोक करके फिर बाद में वैकुंठ लोक में जाते हैं, क्योंकि गोप कुमार वास्तव में व्रजवासी थे, तो उनके भाव के अनुसार उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जिस भक्त में भाव प्रकट हो गया है, जब तक उस भाव पर उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक वो और खोजता ही रहेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग ऐसा है कि हर एक क्षण में वो आनंद का वर्धन होता है। इस वर्धन के कारण वो एक एक लोक करके ऊपर जाते हैं, फिर वैकुंठ लोक में जाते हैं, वहां भी उनको भगवान विष्णु या नारायण की पूजा करके दर्शन करके उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। फिर वहां से वो अयोध्या भगवान श्री राम के धाम में जाते हैं, अयोध्या हनुमान जी के साथ, तो वहां भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। वहां अयोध्या में भगवान श्री राम ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, उनको सब प्रणाम करते हैं, उनके साथ संबंध नहीं मान सकते, सब दास भाव में वहां उनकी सेवा करते हैं, तो वहां भी उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है गोप कुमार की। तब श्री राम उसका भाव जानकर हनुमान जी को कहते हैं कि आप उनको द्वारका में लेके जाइए। श्री गोप कुमार का भाव समझ कर श्री राम हनुमान जी को कहते हैं कि आप इस गोप कुमार को द्वारका में लेके जाइए। तब हनुमान जी उनको द्वारका में लेके जाते हैं गोप कुमार को। तो वहां भी द्वारका में भी भगवान के ऐश्वर्य देखकर उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो वहां कई दिनों तक रहते हैं, लेकिन वो उनका चित्त उदास रहता है। तो वहां से उनको श्री गोप कुमार को नारद की भेंट होती है द्वारका में। तो नारद जी उनका भाव समझ जाते हैं, वो संतुष्ट नहीं है गोप कुमार इधर। तब नारद जी कहते हैं तुम गोलोक वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। तब नारद जी के आदेश से वो गोप कुमार गोलोक जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वो कहते हैं गोप कुमार कि मुझे आज्ञा लेना है श्री द्वारकाधीश से। तब नारद जी कहते हैं कि आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऊपर के लोक में जाना है। जब ऊपर के लोक में जाना है तब आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा अनुभव है कि जब भगवान श्री राम ने तुम्हें खुद यहाँ भेजा, क्योंकि तुम्हारा भाव का संतुष्टि वहां नहीं हुआ था, इसलिए नारद के आदेश से श्री गोप कुमार गोलोक वृंदावन शाश्वत धाम में वहां जाते हैं। इसी शरीर से जो व्रजवासी थे गोप कुमार, वही शरीर से यज्ञ करके वो गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो वहां प्रवेश करने के बाद वहां भगवान का जो नित्य लीला चलता है गोप सखाओं के साथ, उनका दर्शन करते हैं। वहां भी कालिया दमन होता है लीला शाश्वत धाम में, विस्तृत से वर्णन से बृहद भागवत में इस पर टीका लिखा सनातन गोस्वामी ने। तो सब दर्शन करते वहां, कई दिनों तक वहां रहते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रसंग ऐसा होता है, वहां घटना घटती है कि भगवान के इतना सुंदर मधुर दर्शन करके, उनकी लीला का दर्शन करके, जब गोप कुमार उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं, तब वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं गोप कुमार। जब मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब जब उनकी आंख खुलती है तो सीधा वो गोलोक इस वृंदावन में वो अपने आप को यमुना नदी के तट पर पाते हैं। तो इस प्रसंग से जब वहां गोलोक में जाकर हम यद गत्वा न निवर्तन थे, वहां से कोई वापस नहीं आता है, फिर ये गोप कुमार वापस आए। जब मूर्छित हो गए तब उसने आंख खोला, तब वो इस गोलोक वृंदावन में, वृंदावन धाम में वो यमुना नदी के तट पर वो अपने आप को पाए, देखा। तो फिर से वहां जहां से वो गए थे वहां वो आ गए। इस प्रसंग से इस बात का प्रतीत होता है कि जब तक भक्त साधना करके भगवान की नित्य लीला में जो चलता है, उससे पहले जो भगवान की जो पृथ्वी लोक पर जो लीला होता है उसमें जब तक वो भाग नहीं लेगा, उसके पश्चात ही वो भगवत धाम या गोलोक धाम प्राप्त करता है। उससे पहले उसको एक बार जहाँ भगवान की लीला चलता है कहीं ब्रह्मांड में, वहां उनको एक बार भगवान के साथ उनके भगवान की लीला में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रसंग से, गोप कुमार के प्रसंग से यह भी पता चलता है कि जब भक्त कितनी भी साधना करे लेकिन डायरेक्ट वो भगवत धाम प्राप्त नहीं करता, एक बार जहाँ भगवान की लीला होती है वहां उनको प्रवेश मिलता है, फिर बाद में उनको शाश्वत धाम प्राप्त होता है। इसी तरह द्रोण और धरा, जो हम स्पष्ट किया कि वो भगवान के अंश से, वो नंद यशोदा के अंश थे, अंश थे, और अंश होने के कारण जब नंद और यशोदा भगवान के शाश्वत जो माता पिता है वो इस लीला में प्रकटित हुए, तो उसमें वो समा गए, और समाने के बाद जब भगवान की लीला समाप्त हुई तो वो भगवान की लीला में, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। लेकिन जो भक्त साधना करके ऐसा धाम डायरेक्ट प्राप्त नहीं करता है, और कोई भी कितना भी वात्सल्य भाव प्राप्त कर ले फिर भी वो नंद और ईश्वर का पद प्राप्त नहीं करता है। तो इसी तरह जब ब्रह्मा जी के द्रोण और धरा ने, जब ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके इस धरातम पर प्रकटित हुए जो सरोवर नंद बाबा के रूप में, तो जो शाश्वत है वो भी उसमें आ गए। तो ब्रह्मा जी का भी कोई इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो आशीर्वाद दे सके, लेकिन उसने मांगा कि हमको भगवान के पराभक्ति प्राप्त हो, तो इस पराभक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ना कि भगवान के पुत्र रूप में प्राप्त हो, क्योंकि उतना सामर्थ्य ब्रह्मा जी में है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि मुझे भी व्रज में लता पता का अंतर में व्रज में जन्म धारण करूं। इस तरह द्रोण और धरा और नंद और यशोदा दोनों एक ही है, और एक ही होने के साथ भगवान के साथ धाम में वो भगवान के शाश्वत माता पिता है, वो अनादि काल से और नित्य रूप में वो विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह आज के श्लोक में हम देखते हैं कि ततो भक्ति भगवती पुत्र भूते जनार्दने, और भक्ति इस तत्पश्चात इस धराधाम पर द्रोण और धरा आए नंद और यशोदा और भक्ति प्राप्त कर, क्योंकि भक्ति ऑलरेडी उनके हृदय में थे, क्योंकि वो शाश्वत थे भगवान के माता पिता, उनको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भक्ति वर्धन के लिए वो भगवान की लीला में सहाय करने के लिए आते हैं रस प्राप्त करने के लिए। तो पुत्र भूते जनार्दन, तो जनार्दन शब्द इधर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जनार्दन का अर्थ होता है उसमें पर जनार्दन का अर्थ कई आचार्यों ने लिखा है कहा है, जना मतलब जन लोग, जो जन जो जीव है उनके, अर्जन मतलब जो उनका दुख नाश करे या जो असुर है उनको जो मारकर इस पृथ्वी का भार उतारे उसको जनार्दन कहते हैं, या जन का मतलब देवता भी होते हैं, जो देवता हमेशा चाहते हैं प्रार्थना करते हैं कि हमें आप भगवान प्राप्त हो। तो इसी तरह जनार्दन और भी एक अर्थ आचार्यगण लिखते हैं कि उदार अर्थ अवतीर्ण इति भाव, उदार अर्थ उद्धार करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, तो किस रूप में उद्धार करते हैं, तो जो साक्षात भगवान कृष्ण है वो भगवान अवतीर्ण हुए जनार्दन के, जनार्दन जो सभी जीवों का या भक्तों का उद्धार करने के लिए, या असुरों को मारकर उद्धार करते हैं और भगवान अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं करके भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वो सुखदेव गोस्वामी जनार्दन शब्द कहते हैं। और इस तरह जो भगवान की लीला सुंदर जो लीला है उस लीला को दर्शन करके उनका गुणगान सुन के श्रवण करके भक्त भी इसका भी उद्धार हो जाता है, और जो भक्त नहीं है जो जीव है जो सामान्य मनुष्य वो भी भगवान की अगर लीला श्रवण करे इस बाल लीला का तो भी उनका उद्धार हो जाता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जनार्दन शब्द कहते हैं। और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि जो जनार्दन है जो सभी देवताओं का पुण्य है, यहाँ तक के ब्रह्मा शिव जी इंद्र आदि का भी पुण्य है भगवान कृष्ण जनार्दन वही उनके पुत्र रूप में प्रकटित हुए हैं जो नंद और यशोदा के पुत्र रूप में। और जब दंपियंतो नितराम आशीद, उस दोनों द्रोण और धरा नितराम इस नित्य रूप नित्य निरंतर आशीद वो भक्ति का वर्धन होने लगा, और गोप गोपेश और साथ साथ में अकेले नंद और यशोदा माता नहीं, साथ साथ में पूरे व्रजवासियों का भगवान ने ऐसी ऐसी लीला प्रकट की ताकि उनको देखकर उनके संग प्राप्त करके नंद और यशोदा साथ साथ सभी गोप गोपियों का भी आनंद और भक्ति वर्धन होने लगी, क्योंकि संग से ही व्यक्ति भक्त का भक्ति में वर्धन होता है। जब संग प्राप्त होता है उच्च जो जो भक्त जिस भाव में स्थित है और उससे संग कोई उससे उस ऊपर के भक्त का भाव का जो संग प्राप्त करता है तो वो प्राप्त करने की उनको लालसा होती है, तो संग से भक्ति में वर्धन होती है। तो इसी प्रकार गोप और गोपियों गोप के साथ जो नंद बाबा और यशोदा मैया का जो वात्सल्य भाव प्रकटित हुआ उनके साथ साथ जो उनका भाव था वो भी उस भाव में भगवान का भक्ति वर्धन होने लगा। और भारत परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी इधर भारत कहते हैं, भारत कहने का तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी का यही है कि भारत तुम भरत वंशी हो, भरत वंशी होने के नाते तुम ये पूर्ण रूप से इस प्रश्न को समझ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पूर्वज भी कृष्ण के संगी रहे हैं, कृष्ण के भक्त रहे हैं, और तुम्हें भी भगवान का साक्षात दर्शन हुआ है अब माता के गर्भ में, इसलिए इस प्रसंग को पूर्ण रूप से तुम समझ पाओगे। इसी प्रकार जब द्रोण और धरा शाश्वत भगवान के माता पिता है और वो अंश के रूप में प्रकटित होते हैं, लेकिन जब अंशी नंद और ईश्वर आते हैं भगवान की लीला में, तब उसमें समा जाते हैं और भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कई बाल लीला का बाल लीला करते हैं इस वृंदावन गोलोक वृंदावन में। इस अध्याय का ये 51 नंबर श्लोक और बाद में एक 52 नंबर श्लोक है, इसमें प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं दिया है। फिर बाद में इस आठवां अध्याय समाप्त होता है, तो इसमें भी इस अगले श्लोक जो 51 नंबर श्लोक है उसके साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण ब्रह्मण आदेश सत्यम कर्तुम व्रजे विभु सह रामो वर्षिष्वे शक्र चेषाम प्रीति स्वलीलया। कृष्ण ब्रह्मण आदेश सत्यम कर्तु व्रजे विभु, इस प्रकार ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत व्रज भूमि वृंदावन में रहे और उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। इसी श्लोक से जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, इसी तरह ब्रह्मा से वर को सत्य करने के लिए ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया कि आपका जन्म होगा व्रज में और आपके पुत्र रूप में भगवान आएंगे, लेकिन पुत्र रूप में आएंगे ऐसा इधर इस श्लोक में नहीं कहा। ब्रह्मा जी का वरदान सत्य करने के लिए भगवान व्रज में अवतरण धारण करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का वरदान क्या था कि पराभक्ति जो द्रोण और धरा ने मांगा भगवान के वात्सल्य प्रेम में हमारी पराभक्ति प्राप्त हो, उच्च भक्ति प्राप्त हो वात्सल्य भाव में, जो अंतिम स्तर उनके स्थान कोई न ले सके ऐसा भक्ति प्राप्त हो, ऐसा भक्ति प्राप्त हो ऐसा वरदान श्री ब्रह्मा जी ने दिया। तो इस ब्रह्मा जी का वरदान सत्य करने के लिए भगवान इस धराधाम पर सह बलराम बलदेव के साथ वो अवतार धारण किए। तो इस ब्रह्मा जी का वरदान क्या था कि नंद और ईश्वरा को पूर्ण रूप से वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, तो वात्सल्य प्रेम प्राप्त कराने के लिए भगवान अवतरण धारण किए। तो पूर्ण रूप से नंद और ईश्वरा वात्सल्य भाव में थे, तो फिर हमें इस ब्रह्मांड जब भगवान के मुख में दर्शन किए तो वहाँ हम सुने कि उसमें ऐश्वर्य प्रकट किए भगवान ने, तो क्या ऐश्वर्य से प्रभावित हो गए नंद और यशोदा, नंद खास करके यशोदा मैया? तब आचार्य कहते कि नहीं, वो प्रकटित नहीं। उससे पहले जब भगवान ने जमा लेते समय जब अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया तो उससे भी वो प्रभावित नहीं हुई थी। तो उसमें एक आचार्य लिखते हैं कि उस समय भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन क्यों करवाया, उस समय कोई प्रयोजन तो था नहीं। माता यशोदा को भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करवाया जमा लेते समय, तब आचार्य कहते कि जब तृणावध का और सत्रासुर का वध हो गया तब नंद यशोदा मैया वो चिंता करने लगी कि मेरा लाला का क्या होगा, इतना उत्पन्न संकट आने लगा है और बार बार बच जाता है, कहीं ऐसा संकट आ गया तो उनको और भी संकट से मुसीबत में आ जाए, इसलिए वो चिंता करने लगी माता यशोदा। तो चिंता करते करते वो दुबली पतली हो गए, क्योंकि चिंता से भक्त या व्यक्ति ज्यादा खा नहीं पाते हैं, ज्यादा सो नहीं पाते हैं, तो उनका शरीर दुबला पतला हो जाता है। इसी तरह यशोदा मैया का भी शरीर थोड़ा वजन कम होने लगा, दुबला पतला होने लगा। तब भगवान चिंता करने लगे, भगवान सोचने लगे कि माता को थोड़ा चिंता होने लगा कि मेरा तो मैं उनको थोड़ा ऐश्वर्य प्रकट करूं कि मैं ही वो हूं जो सारे जगत में समाविष्ट हूं, मैं ही सभी जीवों का रक्षा करने वाला हूं, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जमाए लेते समय क्षण मात्र उसने ब्रह्मांड का मुख में दर्शन करवाया। तो जैसे भगवान ने ब्रह्मांड का मुख में दर्शन करवाया तो यशोदा मैया को और चिंता होने लगी, ना कि वो प्रभावित हुई। अगर मुख में दर्शन करवाया तो यशोदा मैया सोचने लगी नहीं, ये तो भगवान है साक्षात, उनका रक्षा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैया ऐसा नहीं सोची, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा उनको उन पर, और वो भी और सोचने लगे कि ये क्या और दिखा रहा है, कुछ जादू करने लगा क्या उनके मुख में, और आफत आने वाली है। तो और यशोदा मैया चिंता करने लगी, क्योंकि उसमें वात्सल्य इतना प्रभाव है, प्रधान है नंद और यशोदा में, कि उस प्रभाव से ऐश्वर्य भगवान कितना भी दिखाए उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इस जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में और भी एक प्रसंग कहते हैं कि जब यमला अर्जुन का उद्धार किया है भगवान कृष्ण ने, यशोदा मैया ने बांध दिया कृष्ण को, और उस उखल को घिसते हुए उस यमला अर्जुन वृक्ष के से निकले और दोनों का उद्धार किया। तो उद्धार करने के बाद जब चतुर्भुज रूप धारण करके नल और कुबेर दोनों भगवान के धाम में गए, तब अन्य गोप वहां थे, उसने कहा कि वहां भगवान ने यमला अर्जुन जो वृक्ष गिरे उसमें दो दिव्य पुरुष निकले और भगवान के धाम में ऊपर के लोक में गए, लेकिन सब ब्रजवासियों ने उस बच्चे का बात पर विश्वास नहीं किया। वहां सुखदेव गोस्वामी इस लीला को स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते समय जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वहां प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी ने, लेकिन किसको प्रणाम किया? भगवान ने यमला अर्जुन को उद्धार किया उसका भगवान की कृपा को प्रणाम नहीं किया, वहां यशोदा मैया को प्रणाम किया। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि यशोदा मैया को प्रणाम किया। क्यों यशोदा मैया को प्रणाम किया? कि इसलिए प्रणाम किया कि इतने ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी यशोदा मैया बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ उस ऐश्वर्य का, क्योंकि वात्सल्य भाव में इतनी परिपूर्णता थी उसमें। तो ब्रज में कितना भी ऐश्वर्य प्रकाशित करे भगवान, लेकिन जो वात्सल्य भाव में पराकाष्ठ में नंद और यशोदा है उस पर बिल्कुल प्रभाव नहीं होता है। यहां तक जीव गोस्वामी ने लिख दिया कि नंद और यशोदा की बात छोड़िए, लेकिन जो ब्रज में ब्रज वासी है, जो गोप गोपी है, उन पर भी भगवान का वात्सल्य ईश्वर का प्रभाव नहीं होता है। फिर तो यह नंद और यशोदा जो साक्षात वात्सल्य प्रेम की मूर्ति माना जाता है यशोदा मैया, उस पर प्रभाव कैसे होता है ऐश्वर्य का? कभी नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रसंग से हमें यह थोड़ा जानकारी प्राप्त होता है कि जो द्रोण दिया है वही नंद और यशोदा है, और प्रभुपाद ने इसलिए लिखा है कि जो भगवान के शाश्वत माता पिता द्रोण और धरा है, क्योंकि प्रभुपाद इस आचार्य स्वभाव लेकर उस प्रस्तुत किए हैं। और इसलिए उसने प्रभुपाद ने एक ही एक तात्पर्य में लिखा है कि जिस तरह वसुदेव और देव के पिछले जन्म में शुद्धपा और पृष्ठ थे, तो उसको कई सालों तक हजारों सालों तक वो तपस्या किए, लेकिन ये द्रोण और धरा को इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी भगवान का वात्सल्य प्रेम था, क्योंकि वो शाश्वत जो नंद और यशोदा है उनका ही अंश थे, तो उनको आवश्यकता नहीं थी तपस्या करने की जिस तरह पृष्ठ और सुतपा ने किया, और वो नंद और यशोदा बने, इसलिए उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, जो न साक्षात लोक विदित है यशोदा वसुदेव और देव की उनके माता पिता है, लेकिन देव की माता को इतना भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो संतान करा सकी, तुरंत ही भगवान आदेश दिया तो गोकुल में छोड़ दिए, लेकिन यह नंद और यशोदा को ऐसा प्राप्त अवसर क्यों हुआ, ऐसा अवसर प्राप्त? इसलिए जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया उसी अनुलक्ष्य में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका आंसर दिया। लेकिन परीक्षित महाराज भी जानते थे कि नहीं, ये शाश्वत माता पिता है, उनके अंश रूप में आए, और सुखदेव गोस्वामी भी जानते थे। तो परीक्षित महाराज को ये भी उनका भाव था कि क्या कोई भक्त ऐसी भक्ति करके कि भगवान का शाश्वत माता पिता हो सकता है? तब उसी का प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते कि वो उसे हमें उनका अनुगत्य में सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो माता पिता नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नंद और यशोदा अनादि काल से भगवान के माता पिता शाश्वत रूप में है, और जीव गोस्वामी लेकर उनके देह से ही वो प्रकट हुए हैं नंद और यशोदा, तो उनका स्थान कोई नहीं ले सकते। तो इस प्रसंग से इस तरह बहुत व्याख्या है, लेकिन सब संक्षेप में कि बुद्धि हमारे नहीं होने के कारण कुछ वर्णन कर सके, तो उसमें भी कोई त्रुटि हो या कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिए। और प्रश्न तो इसमें अगर कोई प्रश्न होगा तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए कोई प्रश्न तो मैं नहीं लूंगा, तो यहीं पर मैं इस सत्र को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की।